ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है और सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से किसानों की जो आमदनी हो वो बढ़ सके, और MSP पर लिया गया फैसला जो कैबिनेट ने लिया ये इसी दिशा में एक और कदम है। विस्तार में जानते हैं। दरअसल सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के MSP में वृद्धि की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। MSP में सबसे अधिक वृद्धि रेप सीड और सरसों के लिए ₹300 प्रति क्विंटल तथा मसूर के लिए ₹275 प्रति क्विंटल की दर से की गई है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के लिए ₹210 प्रति क्विंटल, ₹150, ₹140 प्रति क्विंटल और ₹130 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। शेखर, जैसा कि हमने देखा मंत्रिमंडलीय समिति ने कई सारे फैसले लिए हैं, इसमें किसानों का फैसला सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं। वैसे तो सभी फैसले महत्वपूर्ण हैं और साथ में कई और फैसले लिए हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय से वाराणसी को जोड़ने के लिए एक और रेल और सड़क पुल का निर्माण, इसके फायदे होंगे। DA में बढ़ोतरी की गई है और भी कई फैसले हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहते हैं किसानों को लेकर। किसानों को लेकर सरकार बेहद ही गंभीर है और लगातार ये प्रयास कर रही है कि उनकी आमदनी बढ़े, फसलों की गुणवत्ता बढ़े। इस फैसले को कैसे आप देखते हैं?
MSP बहुत संवेदनशील मामला है। किसान के लिए हमेशा वो चाहते हैं कि उनकी कोई लॉस ना हो। हर साल सरकार बढ़ती आई है MSP। आप देखेंगे अभी तक रबी में 7 क्रॉप्स के लिए देते हैं और खरीफ में 14 क्रॉप्स के लिए देते हैं
जी।
इस बार भी उन्होंने काफी बढ़ाया है और खास करके जैसे आपने जिक्र किया गेहूं के लिए ₹150 क्विंटल बढ़ा है, और लेकिन सबसे ज्यादा सरसों और रेप सीड के लिए जो बढ़ा है ₹300 पर क्विंटल और चना के लिए 210। अब सवाल है इतने ज्यादा बढ़ोतरी इसके लिए क्यों हुई है, सरसों और चना के लिए क्यों ज्यादा हुई? इसका पीछे सरकार की यही मानसिकता है कि किसान ज्यादा से ज्यादा इन फसलों को ध्यान दे, क्योंकि लगातार चावल और गेहूं पे बड़ा फोकस रहता है, लेकिन हम जानते हैं कि कई राज्यों में जो वाटर टेबल जो कहते हैं वो नीचे जा रहा है, जिसके वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जोर दिया जा रहा है। जब किसान के अच्छे मूल्य मिलने की गारंटी है तब जाके क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी किसानों की तरफ से भी वही क्रॉप्स को उगाए जिससे ज्यादा उनको मिनिमम गारंटी प्राइस मिलेगी और मार्केट में भी अच्छी रेट मिलेगी। जो फैसला हुआ है इसपे दो है कि किसानों के अच्छी रिटर्न मिलनी चाहिए, साथ में जो भारत की जो रिक्वायरमेंट है दाल वगैरह की वराइटीज को लेकर, और इसके साथ साथ इसमें एडिबल ऑयल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो आपने रेप सीड की बात की इससे तेल बनता है, जो तेल उसकी कीमत भी मार्केट में अच्छी मिलती है। तो एक बड़ा फैसला है, लेकिन इसका सरकार ने भी इसका एक फॉर्मूला है, बजट में भी सरकार ने 2018-19 की बजट से लगातार सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से कम 1.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए MSP। इसीलिए उस हिसाब से एक फॉर्मूला थी कि अगर वीट की बात हो तो एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है 105% है, और रेप सीड मस्टर्ड में कम से कम 98% है। सो इस तरह के एक रेट बनी हुए जिस रेट के हिसाब से सरकार देती आ रही है, और सरकार चाहती है कि फार्मर्स को अपनी ठीक वैल्यू मिले उनकी पैदावार के लिए, और उनका इंसेंटिव भी रहे कि भाई हम डाइवर्सिफाई करें, केवल चावल गेहूं ना करके जाके पल्सेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम देख रहे हैं सरकार के फैसले से काफी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, काफी किसान आजकल ज्यादा चना और सरसों ये सब ज्यादा बोल रहे हैं। ये फैसला जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। आप जानते हैं सरसों का तो काफी जगह पे कवरेज है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, वैसे चना की भी आजकल कई राज्यों में ये हमारे किसान भाई इसको उगाते, तो एक बड़ा फैसला है।
और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में क्या कहा, आइए जरा एक नजर डाल लेते हैं।
रबी मार्केटिंग सीजन के लिए MSP अप्रूव हुआ है दैट द प्राइस एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज बढ़ोतरी की गई है।
जी शेखर, तो हमने सुना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी वही बात की जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दरअसल किसान जो हैं वो मुख्य फसल जो बोलते हैं धान और गेहूं उसमें तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन जो ये साइड के पल्सेस हैं, चना है, सरसों है, रेप सीड्स हैं, इस पे उनका ध्यान थोड़ा कम होता था। इसी वजह से सरकार ने सबसे ज्यादा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाया है इन्हीं पर बढ़ाया है ताकि वो इसकी खेती के लिए प्रेरित हो सके। और आपने जैसा बताया कि जब इन फसलों की खेती की जाती है साइड बाय साइड बीच के मौसम में तो उससे जो भूमि का जल स्तर रहता है वो भी बढ़ा रहता है और साथ ही इसका तीन लाभ है, एक तो आप पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं, पानी का जल स्तर भी ठीक है और दूसरी बात किसानों को उसका लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, बढ़े हुए एमएसपी से उनकी कीमत मिलेगी और जो कंज्यूमर्स हैं, जो खाने वाले हैं, हम जानते हैं कि मोटे अनाज, चना, सरसों, इन सब का सेवन बढ़ाने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो सरकार एक तरीके से कहें कि एक फैसले से तीन लाभ पहुंचाना चाह रही है, आपका क्या कहना है?
बिल्कुल, सरकार की सोच यही है कि किसानों को जितना वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको वैल्यू मिलना चाहिए। और दूसरी बात, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर पहले भी काफी जिक्र हुई थी स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट वगैरह, लेकिन सरकार ने तय किया है जो ऑल इंडिया एवरेज जो बनता है, कई राज्यों में कई कई कॉस्ट होती है लेकिन ऑल इंडिया जो कॉस्ट बनती है उससे डेढ़ गुना ज्यादा मिलना चाहिए एमएसपी। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या लिया जाता है, उसमें तो ह्यूमन लेबर भी है, ह्यूमन लेबर का मतलब कितने हाथ उस पे काम करते हैं खेत पे, और सरकार ने यह तय किया कि भाई परिवार के लोग भी लग जाते हैं, उसका भी एक कॉस्ट होता है। किसान परिवार में आप देखेंगे सब काम छोड़ के फिर इसी में लग जाते हैं सीजन के समय, तो वो जो ह्यूमन लेबर हो उसके साथ हायर भी करते हैं, कुछ लोगों को काम दिया जाता है तो उसका कॉस्ट, और बाकी मशीन का कॉस्ट भी जो लगेगा वो आपके बैल की हो या आपकी लेबर हो या मशीन लेबर हो, फिर अगर कोई लीज पे लिया है अपना जमीन तो उसका कॉस्ट भी होता है, और बाकी जो मटेरियल इनपुट्स यानी बीज हो, फर्टिलाइजर हो, मेन्योर हो और पानी सिंचाई के लिए खर्चा है उसका भी लिया जाता है, और जो ट्रैक्टर हो जिसकी जो एक डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी होती है उसकी भी एक कॉस्ट है, अगर वर्किंग कैपिटल किसान बड़े रूप में कर रहे हैं तो उसका भी कॉस्ट, और पंप चलाने का कॉस्ट, तो कई मिसलिनियस कॉस्ट है। ये सारे कॉस्ट को टोटल करके उससे डेढ़ गुना हिसाब करके ये कॉस्ट फिक्स होता है। सो इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2025-26 की जो रबी क्रॉप की जो ये है ये सरकार का लगातार एक चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा बीच बीच में एक आवाज आ रही थी भाई आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानून ले आओ, इसको लेकर भी कई बार चर्चा हुई है, लेकिन कानून का मतलब नहीं है, देखिए कानून से आप नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस जो है मार्केट फ्लक्चुएशन है, लेकिन सरकार हमेशा ध्यान देती है कि किसान को नुकसान नहीं होनी चाहिए, अपने कॉस्ट से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई समय में ऐसा होता है किसान भाई कहते हैं भाई हमने खर्चा बहुत किया, हमने उधार भी ली तो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो उस हिसाब से सरकार ने इस बार ये जरूर ध्यान दिया है कि उन फसलों पर ज्यादा एमएसपी रेट बढ़ाए ताकि किसान भाई उस क्रॉप्स को ज्यादा उगाएं, उस पर ज्यादा फोकस करें ताकि उनका रिटर्न भी बढ़े और देश की जो आवश्यकता है वो भी पूर्ण हो।
बिल्कुल, केवल कानून लाने से चीजें बहुत सुव्यवस्थित हो जाती है ऐसा नहीं है, अंतिम फायदा किसानों को पहुंचना चाहिए, सरकार की ये कोशिश है और एमएसपी का लगातार बढ़ाया जाना और ठीक ठाक रूप से बढ़ाया जाना प्रतिशत के संदर्भ में ये इसका उदाहरण है। और शेखर, साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और बड़ा फैसला किया है उत्तर प्रदेश में रेल और सड़क परिवहन को लेकर। दरअसल गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क सेतु बनाने की मंजूरी मिली है, वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग के निर्माण को मंजूरी मिली है और इससे कनेक्टिविटी में सुविधा होगी, यात्रा और आसान हो पाएगा, लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी तेल के आयात को कम करने और साथ ही पर्यावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। ये भी एक बड़ा फैसला है। अभी हम जानते हैं कि पंडित दीनदयाल यानी जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, वहां से वाराणसी की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कनेक्टिविटी के नाम पर एक ही ब्रिज था, वो भी सड़क ब्रिज है, अंग्रेजों के जमाने का है और बहुत दिनों से एक जरूरत महसूस हो रही थी, सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए वहां पर मंजूरी दे दी है। चार वर्ष में ये निर्माण कार्य पूरा होगा। 2642 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद दो जिले जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में रेल के लिए एक बड़ी खबर है?
बिल्कुल, सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रही है और प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हर प्रोजेक्ट के हमें गति भी देखना है, तो हमेशा कहते हैं स्केल और स्पीड, इस हिसाब से देखेंगे। 4 साल में कंप्लीट करने की बात है। हम जानते हैं ये जो रूट है वाराणसी बोगलसराय रूट, यानी वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन की जो ये रूट है, ये सबसे कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड इसीलिए क्योंकि यहाँ मालगाड़ी भी ज्यादा चलते हैं और इस रूट को यूज करते हैं, और पैसेंजर गाड़ी भी कई है, क्योंकि ये वर्चुअली आप देखेंगे उत्तर और पूरब का लिंक है, ये नॉर्थ और ईस्ट का एक ट्रंक रूट है। इसीलिए एक जरूरत महसूस हुई है कि यहाँ पे और एक पुल बननी चाहिए। ये पुल बनेंगे और इससे देखिए दो जिला में, मतलब वाराणसी जिला और चंदौली, दो जिले में आप देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अब सरकार की सोच है कम से कम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 10 लाख ह्यूमन डेज की कैलकुलेशन होगी, यानी 4 साल में बहुत नौकरियां यहाँ पे होंगे। आपके डेली वेज अर्नर्स की भी गुंजाइश है और जो हमारी शिक्षित युवा है उनके लिए भी प्रोजेक्ट की ये, तो ये पैसेंजर और रेड ट्रेन दोनों की है। और इसके साथ साथ आज वाराणसी एक प्रकार से टूरिज्म हम बन गया है, कई इंडस्ट्रीज भी आ चुके हैं। ये वाराणसी की जो कहते हैं इंटरलैंड या सराउंडिंग एरियाज है, और कई इंडस्ट्रीज आ गए। तो सरकार ने जो आने वाले 5 साल में क्या ट्रैफिक होगी, कितना ग्रोथ होगी, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट हुआ है। जो विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री की सोच है उस हिसाब से ये किया जा रहा है। और इससे देखिए दो चीजें होगी, मैंने तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात, साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की यहाँ भी कई होगा। ऐसे प्रोजेक्ट में कई सर्विसेज आ जाएंगे। इस सर्विसेज हमारे उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उसमें आप देखेंगे जब इतनी पीपल और गुड्स और सर्विसेज की इतनी सब कुछ हो रहा है, वैसे देखा जाए तो भी जो रेलवे नेटवर्क है उसे 30 किलोमीटर बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है जैसे आपने कहा। लेकिन ये प्रोजेक्ट की वजह से जो आर्थिक वहां पे एक एक्टिविटी की जो अपग्रेड होगी, दो जिले की जब ने बात किया वाराणसी और चंदौली की, कई लोगों के लिए एक अवसर खुलेगा। प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में भी कमिटमेंट दिया था कि रेलवे की तरफ से जो पोल्यूशन है वो काफी कम करेंगे। और देखिए ये जो ब्रिज बनेंगे वो टोटल इलेक्ट्रिफाइड होंगे, तो इलेक्ट्रिक से होगा तो डीजल की उपयोग कम हो जाएगा। और लगातार जो रेलवे ने ये सोचा है कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है उसको कम करेंगे, और ऐसे कम करेंगे जिसका अगर वैल्यू देखा जाए वो 2 करोड़ अगर पेड़ लगाते उसका इक्वलेट रहेगा। इस तरह की कोशिश हो रही है। तो ये प्रोजेक्ट हमें सब दृष्टि से देखना पड़ेगा। इसमें दो बातें होगी, नए पुल तो होगी, साथ में जो अप एंड डाउन लाइन है इसके साथ और तीसरा और चौथा लाइन भी बढ़ेगा, ए भी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और उस रीजन की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आएगा।
जी शेखर, आपने बिल्कुल सही कहा। आमतौर पर जब नदियों के ऊपर बनते हैं रेलवे पुल तो उसमें 2 ट्रैक्स ही होते हैं आमतौर पर, अप एंड डाउन लाइन, लेकिन इसको बड़ा ही विजनरी और फ्यूचरिस्टिक रखते हुए इसमें 2 अपलाइन और 2 डाउनलाइन यानी 4 ट्रैक हैं। तो सरकार पहले से ही ये मानकर चल रही है कि इस पर बहुत ट्रैफिक होगा और ये हर तरीके से फायदेमंद कैसे रहे इसको सोचकर ही इसको बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कहते हैं इस बारे में, आइए जरा सुन लेते हैं।
एक नया ब्रिज बनाए जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा कि हमारा एंटायर ईस्ट और वेस्ट इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, करीब 4 साल का टाइम लगेगा।
तो शेखर, हमने सुना कि केंद्रीय मंत्री ने भी यही चीज कही कि किस तरीके से यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 4 साल के कम समय में ही ये पूरा हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर आज की हमारी चर्चा यही हम समाप्त करते हैं। शेखर अय्यर, आपका आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।